راهلا جان، یہ خوش قربانی میں نے رباب خانم کے باغ سے لی ہے. یہ عام قربانی سے بہت مختلف ہے، لیکن اسے اکیلے نہ کھانا. جب بھی کھانا مریم کو بھی ضرور دینا. میں جب بھی اس لڑکی کو دیکھتی ہوں ایسا لگتا ہے ابھی اس کی جان نکل جائے گی.
آپ کو بہت زحمت ہوئی، شکریہ.
عزیز خانم، میرے لیے کیا لائیے؟
ڈاکٹر صاحب، آپ عباس کے ساتھ بات کریں اور ٹافیاں مجھ سے لیں. چلو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے بھی کچھ نہ کچھ لائی ہوں. یہ لو ڈاکٹر صاحب، یہ وہی اچار ہے جس کی میں بات کر رہی تھی. 7 سال پرانا سرکہ ہے، اس کا اچار سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی محنت سے سرکے میں بنایا گیا ہے، تمہیں بھی پسند آئے گا.
اب میری وہ عمر نہیں کہ کچھ بن سکوں.
اچھا خود نہ کھاؤ، بچوں کو دے دو.
ڈاکٹر صاحب نے ابھی شادی نہیں کی ہے.
واہ، تم نے ابھی تک کیوں شادی نہیں کی؟ کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، تم شام کو میرے پاس آ جاؤ، تمہارے لیے خصوصی اچار ڈالوں گی.
شاباش، کیا ہمت ہے.
کیا ہے، دوبارہ باہر جاؤں؟ مجھے پتا نہیں یہ کیا کام ہے. ڈاکٹر، آپ جو کچھ عباس کو کہتے ہیں وہ 2 منٹ بعد نہیں لیکن 2 گھنٹے بعد آ کر سب مجھے بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے.
میڈیسن کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا، آپ ان کو کیمیو تھراپی کے لیے آمادہ کریں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے، زیادہ وقت نہیں ہے. اگر کیمیو تھراپی شروع نہ کی تو 1 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گی.
ماں اس پر راضی نہیں ہوتی، کیمیکل علاج کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوتی ہیں.
کتنے اچھے بچے ہو، اپنا ہاتھ تو بتاؤ. دیکھو یہ کہتا ہے چلو چوری کرنے جائیں، وہ کہتا ہے کیا چوری کریں، وہ کہتا ہے سونے کا تھال، یہ کہتا ہے خدا کا جواب کون دے گا، وہ کہتا ہے
میں موٹے سر والا.
تمہیں تو مجھ سے زیادہ اچھا آتا ہے. تم رو کیوں رہی ہو بیٹی؟
میرے بیٹے کو کینسر ہے.
نا امید نہ ہونا، مایوسی شیطان کا حربہ ہے. حضرت عباس علیہ السلام سے شفا مانگو. میں نے حضرت عباس سے جو مانگا مجھے ملا.
امی چلیں.
حضرت عباس کی نظر ضرور ماننا، شیطان پر بھی لعنت بھیجنا. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں بھی دعا کروں گی.
واہ،
बेटे इस कदहारन क्यों बजा रहे हो? क्या बहुत जल्दी है तुम्हें? हाँ, आज मेरा आलू गोश्त खाने को दिल बहुत चाह रहा है। तुमने तो काफी अरसे से मुझसे वादा कर रखा है और तुम्हारे घर में तो आलू गोश्त पकता ही नहीं।
अम्मी, आलू गोश्त में चर्बी घी बहुत ज्यादा होता है, आपके दिल के लिए नुकसानदेह, मरीज हो जाएंगी।
तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे 30 साल मजीद जिंदा रहना है। बेटे, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। ये अच्छा नहीं कि मरने से पहले दिल में कोई हसरत बाकी रह जाए।
ठीक, आपको आलू गोश्त खिलाऊंगा, लेकिन एक शर्त है।
मोरे, कैसे ढीठ हो, इतनी मुद्दत के बाद आलू गोश्त खाने का वादा पूरा कर रहे हो, इसके लिए भी शर्त शुरू, शर्म करो।
मैं आप पर कुर्बान जाऊं अम्मी। ठीक ठीक। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन खुदा के लिए मेरी बात की लाज रखें। आप इस मसले में जिद ना करें, डॉक्टर को कैमोथेरेपी करने दें।
फिर वही पुरानी बात। मैं तो मरने वाली
हूँ। अम्मी जान, फिर शुरू कर दिया।
अब्बा सुनो, ऐसी बातें ना करो। मैं इसी शक्लो सूरत के साथ खुदा के हुजूर जाना चाहती हूँ। मैं गंजी मंजी होकर नहीं जाना
चाहती। गंजी मंजी क्या है अम्मी जान? केमिकल तरीके से इलाज होगा, ठीक हो जाएंगी और दोबारा जिंदगी करेंगे आप।
अच्छा अच्छा, मैं अपनी हालत को तुमसे और डॉक्टर से ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। सिर्फ मेरी तुमसे सिर्फ एक ख्वाहिश है।
क्या?
मेरी किस्मत में मक्के का सफर ना था, सिर्फ मशहद की ज़ियारत नसीब हुई। इमाम रज़ा पर कुर्बान हो जाऊं, उनकी ज़ियारत गरीबों का हज है। आपका मज़ार मेरे लिए कर्बला मौला है। मैं हर रोज यहाँ आकर सलाम भेजती हूँ, वैसे ही जैसे आप बैनुल हरमैन में सलाम भेजते हैं। जब जवान और सेहतमंद थी, उन दिनों कर्बला का रास्ता बंद था, यहाँ मेरे पास पैसे ना थे, और अब जब बूढ़ी हो गई हूँ, शायद कर्बला के काबिल ना थी, और खुदा ने इस जगह को मेरे जख्मों का मरहम करार दिया। ये जगह मेरे लिए कर्बला है। अब देखो मेरी प्यारी बेटी ने क्या किया है।
दादी, जब वो बुढ़िया कद्दू में थी तो सांस कैसे ले रही थी?
उस बुढ़िया ने खुदा से दुआ की कि वो बगैर आफियत घर पहुंच जाए। खुदावंद आलम ने भी उसके लिए कद्दू के अंदर से सांस लेने की सबील पैदा कर दी।
खुदा जो भी चाहे कर सकता है।
हाँ, क्यों नहीं,
हर काम,
हर काम। ये वो भी कर सकता है कि मैं तुम्हें अभी खा जाऊं।
आपकी इबादत कबूल हो।
खुदा कबूल करे।
अब्बास के लिए गुलगाऊ जबान तैयार किया था लेकिन उसने नहीं पिया। डॉक्टर ने कोई नई बात बताई है?
हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी खाल बहुत सख्त है, 70-80 साल तक और जिंदा रहूंगी। शायद अब्बास इसी वजह से परेशान है।
अजीज जी भी तंग ना करें मुझे।
डॉक्टर ने कहा है कि मेरी हड्डी शीशम की लकड़ी से भी ज्यादा मजबूत है, दिल की धड़कन भी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ अकल थोड़ी सी खराब हो गई है। तुम मत डरो, मैं डूबते सूरज की तरह हूँ। सास बहू का मसला भी अब दूर नजदीक खत्म होने वाला है, बहुत जल्द तुम्हारी जान भी छूट जाएगी।
आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरे लिए सगी माँ से भी ज्यादा हैं। इंशाल्लाह 120 साल।
अरे बस करो बहू, 120 साल तुम क्या चाहती हो?
अगर इंसान के रंजो अलम सिगरेट पीने से खत्म हो जाते तो तमाम मेडिकल स्टोर बंद कर देते और सिगरेट बेचते। शायद तुम भूल गए कि ऑपरेशन थिएटर तक गए थे। क्या हुआ है? जब से वापिस आए मूड खराब है, मेरे साथ बात तक नहीं कर रहे हो बिल्कुल। आखिर बताओ तो क्या हुआ है?
अगर एक माह तक केमोथेरेपी शुरू ना हुई तो वो मर जाएंगी। मैंने कई बार कहा है लेकिन तैयार नहीं होती। मुझसे कहती है कि रोजे के नजदीक कब्र खरीदूं उनके लिए। क्या तुम उन्हें केमोथेरेपी के लिए तैयार कर सकती हो?
कैसी कब्र? अब यहाँ मजीद कब्र की गुंजाइश नहीं, सब फरोख्त हो चुकी हैं।
हाजी साहब ऐसी बातें ना करें, क्या दूसरे के लिए रिजर्व की हुई है?
कब्र के लिए ऐसी बात नहीं कहते,
आज के दौर में हर चीज मुमकिन है।
अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो लो देख लो, आखिरी कब्र हाजी मेमार अली और उसकी बेगम ने खरीदी है। ये कब्रें मेरे बाप की विरासत तो नहीं, अगर जगह होती तुम्हें जरूर देता। वैसे 5-6 माह में नई जगह तैयार हो जाएगी, कुछ कब्रें काबिल फरोख्त हैं, मैं अपने लिए भी एक खरीदूंगा। अगर तुम्हें भी चाहिए हो तो एडवांस दे दो, तुम्हारे लिए बुक करा देता हूं।
मेरे पास 6 महीने का वक्त नहीं।
क्या मतलब? कोई खास बात हो गई है?
मुझे कुछ नहीं हुआ, वालिदा को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, यानी कहते हैं कि
मैं तुम्हारी वालदा को गुज़श्ता 30 बरसों से जानता हूं। खुदा के कामों को देखो, चंद दिन पहले मैंने उन्हें मुकम्मल सेहतमंद देखा, माशाल्लाह ठीक ठाक थी। खुदा उनको शिफा दे। अपना टेलीफोन नंबर यहां लिख दो, शायद आपकी वालदा मोहतरमा के लिए कुछ कर सकूं।
हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ह- हाजी जान आपका मुखलिस दोस्त हूं, आपका खिदमत गुजार जी। किस तरह, क्या ये मुमकिन है? मैं अभी आ रहा हूं, अभी आता हूं। हमें लगता है आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। हाजी रहीम थे।
अब्बास मुइज्जा हो गया। मैंने एक आदमी से रابطہ किया है जिसने काफी अरसे से यहाँ एक कब्र खरीदी थी, लेकिन इस वक्त उसे पैसे की जरूरत है, अब वो बेचना चाहता है। उसने बहुत ज्यादा कीमत रखी थी, लेकिन मैंने उससे बात की है, वो 9 मिलियन पर राजी हो गया है।
9 मिलियन?
9 मिलियन नहीं, 9 मिलियन। वो भी मुझे पैसे की जरूरत है, वरना मैं बेचना नहीं चाहता।
आखिर 2 मीटर जमीन के 9 मिलियन तो मान?
वो 2 मीटर आम जगह नहीं है, बहुत से लोग इससे ज्यादा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम नक रकम देना चाहते हो और मुझे फौरन जरूरत है।
क्या तुम कुछ रियायत दे सकते हो?
मुझे जो रियायत देनी थी हाजी साहब को बता दिए। अगर तुम्हारे पास काफी रकम मौजूद नहीं है तो अपने को मुश्किलात में मत डालो। कब्र का क्या मसला है, यहाँ पर हो या किसी बयाबान में? पुराने लोग कहते थे कि जगह की हैसियत मकीन से होती है, मकान से नहीं। कब्र अहम नहीं, जो उस कब्र में सोएगा वो अहम है।
बहुत बेहतर, मसला हल हो गया। तुम मुझे 2 दिन की मोहलत दो ताकि मैं पैसे इकट्ठे करके तुम्हारे पास ले आऊं, तुम मुतमईन रहो।
तुम गाड़ी को बेचना चाहते हो,
वो भी कब्र के लिए? खुदा के लिए अक्ल से काम लो। ये गाड़ी सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी और बच्चों की भी है। हमने कम परेशानियां नहीं देखी। कहीं तुम ये नहीं समझना कि मैं गुर्बत से डरती हूँ, लेकिन अगर ये गाड़ी बेची तो फिर दोबारा नहीं खरीद सकेंगे।
बाकी पैसों से एक सस्ती गाड़ी खरीद लूंगा और बाद में मेहनत मजदूरी करके नई गाड़ी खरीद लेंगे।
ख्याली पुलाव मत पकाओ।
अब क्या करूँ, क्या माँ की ख्वाहिश का एहतराम ना करूँ? मेरी बूढ़ी माँ ने पूरी जिंदगी में कभी अच्छे दिन नहीं देखे, अब जबकि मर रही है कम अज कम उसकी ख्वाहिश पूरी कर दूँ।
तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे वो सास है और मैं बहू। तुम्हें पता है अजीज खानों मेरे लिए माँ की तरह हैं। इन 2-3 सालों में जबकि वो मरीज थी मैंने उनकी खिदमत की है, बसों और गाड़ियों में एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। मैंने तुमसे ज्यादा उनकी खिदमत की है।
मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता, बस।
ठीक है, लेकिन अगर माँ को इसका इल्म हो गया तो वो हरगिज इस बात पर राजी नहीं होंगी। मैं भी राजी नहीं हूँ, और अगर मैं भी राजी ना हूँ तो वो कब्र कदसी है।
अम्मी जान दुआ करें इंशाल्लाह हर चीज ठीक हो रही है। अब इजाजत दें।
खुदा हजरत अब्बास के सदके में तुम्हें अज्र दे।
अब्बास यार माफ करना, हाँ क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम बिल्कुल बेवकूफी हो क्या यार? तुमने ये गाड़ी कितनी मुश्किल से खरीदी है, अब बेचना क्यों चाहते हो?
क्यों का जवाब फिर कभी, अगर कोई ग्राहक हो तो बताओ।
खरीदार तो है, आज ही एक आदमी आया था जिसे तुम्हारी गाड़ी पसंद है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मत बेचो।
मैं इसके कागजात क्लियर करवाता हूँ, तुम ग्राहक को बुला लो। ये लो चाबी। जहान क्या हुआ, खरीदार आ गया? आखिर क्यों? महनाज ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे तकलीफ भी दे रही हो और हमारे घरेलू मसले को लोगों को भी बता रही हो।
मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ जहरा बेगम ने मुझे रास्ते में परेशान देखा और पूछा इतनी परेशान क्यों हो, तो मैंने कहा कुछ नहीं। मेरा शोहर गाड़ी बेच रहा है, यही।
अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, मेरी माँ मुझसे और कुछ नहीं चाहती, वो इससे खुश है बस।
मेरी और बच्चों की जरूरियात भी इसी गाड़ी से पूरी हो रही हैं।
अगर कोई और काम नहीं है तो मुराद के पास जाओ और अजीज का लिहाफ और गद्दा ले आओ, ठीक है? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम भी उनके लिए कुछ करो।
हाजी साहब, लिहाफ तैयार नहीं हुआ, मुझे जल्दी है जाना है।
रहीम साहब कह रहे थे कि तुमने अपनी माँ के लिए रोजे के हाथे में कब्र खरीदी है, बड़ी तारीफ की बात है। इस दौर में ऐसी औलाद कम है जो अपने वालिदैन के लिए कब्रें खरीदे, काबिल तारीफ है। अच्छे काम में एतराज नहीं करना चाहिए, लेकिन लेकिन तुम्हें पता है कि कब्र कब्र है, मोहब्बत और अकीदत में फासले की कोई हैसियत नहीं। मोहब्बत खुदा की तलवार है, वो काटती है, और उसके लिए जमान और मकान की कोई हैसियत नहीं, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता।
उस्ताद, मेरी बीवी यहां पर भी आई थी।
गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। वो ऐसे करनी ने रसूल खुदा की ज़ियारत नहीं की थी, और मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा इससे लगाओ कि रसूल खुदा यमन की तरफ मुंह करके फरमाते थे कि वो इसकी खुशबू महसूस कर रहा हूं। जब जंग उहद में पैगंबर का एक दांत शहीद हुआ तो सैकड़ों मील के फासले पर ओएस करनी का दांत टूट गया। इसे कहते हैं मोहब्बत।
अस्तगफिरुल्लाह, क्या मेरी बीवी यहां भी आई थी अपना दुखड़ा सुनाने के लिए?
नहीं, मैंने रास्ते में उन्हें देखा, बहुत परेशान थी। मैंने जब वजह पूछी तो बड़ी मुश्किल से बताया।
अजीब बात है, आज सब लोगों ने मेरी बीवी को गली में सख्त परेशान और मुस्तरिब देखा।
देखो, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, जाकर अपनी अम्मी से कहो, यकीन करो वो तैयार हो जाएंगी। उनसे कहो कि मुराद ने कहा है कि तुम्हें मालूम है हारून जो जमीन और आसमान में मलून है उसकी कब्र इमाम रजा अलैहिस्सलाम के पास है, जो जमीन और आसमान के सुल्तान है। लेकिन जब जायरीन इमाम रजा अलैहिस्सलाम की कब्र पर पहुंचते हैं तो आप पर दुरूद भेजते हैं और हारून पर लानत। इमाम फरमाते हमारी कब्रें मोमिनों के दिलों में होती हैं। इस तरह से मुझे लगता है तैयार हो जाएंगी। अपनी बीवी को नाराज करके गाड़ी बेचना मेरे ख्याल में सही नहीं है। अगर ये काम तुम करोगे तो हो सकता है तुम्हारी अम्मी को कब्र में तकलीफ हो।
महनाज, महनाज
घर में नहीं है, बाहर गई है।
यकीनन मोहल्ले में किसी और के सामने दुखड़ा सुनाने गई है। अब तय खाने में क्या कर रही हैं? अब अचार वगैरह छोड़े, आपको मेरे बाप की रूह की कसम।
अब बस क्या कह रहे हो, घर वीरानों बर्बाद है और घर का मालिक दीवारों के नक्शो निगार में गुम है। बेटा, जब तक मेरी जान में जान में काम करती रहूंगी, थोड़ी देर के लिए नीचे आओ, मुझे तुमसे काम है। अब बस देखो, ये मेरी तमाम जिंदगी का सरमाया है। मैंने महनाज से भी कहा है कि मेरे बात इन चीजों को इसे जाया ना करना, एक एक चीज को गहोगो तक पहुंचाना। मैंने हर एक के ऊपर गाहक का नाम और तारीख लिख दी है, बड़े एहतराम और सलीके से उन तक पहुंचाना, उससे जो आमदनी हो उसको खुदा की राह में खैरात कर देना। अरे तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये दोनों नुसरत बेगम के हैं, ये उस तक जरूर पहुंचा देना। और हाँ, उससे पैसे नहीं लेना, सिर्फ इतना कह देना कि अजीज खानम ने सलाम कहा है और गुजारिश की है कि जब भी इमामजादे की ज्यारत के लिए जाना मेरी तरफ से भी ज्यारत करना।
आपकी तरफ से क्यों, वो ज्यारत करेंगे इंशाल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे।
बेटे, मुझे तुमसे एक और काम भी है। रबाब खानम कह रही थी हरम के अंदर कब्र नहीं मिलेगी, और अगर मिल भी जाए तो उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हम नहीं खरीद सकते, यानी 2 मिलियन।
आपको पैसे से क्या काम मम्मी?
मैं हरम में गई, मैंने कहा कि आपके साये में रही, अब आपको इतनी बुरी लगती हूँ कि हरम में मेरे कब्र के लिए जगह नहीं। लगता है कि हरम में हमारे लिए जगह नहीं। अब्बास, एक काम करो, रहीम साहब से जाकर बात करो और उसे कहो कि हरम से बाहर दीवार के साथ एक मीटर कब्र के लिए जगह दे दे, कब्र के ऊपर लोहे कब्र की भी जरूरत नहीं है।
दीवार की क्या बात है, मैंने हरम के सहन में जगह ली है, कल उसकी इजाज़त मिल जाएगी।
पैसे कहाँ से आए?
कुछ बचत की हुई थी, उससे लूंगा।
हरगिज नहीं, वो पैसे महनाज उसके बच्चों के हैं, मैं उम्र के आखिरी हिस्से में किसी की मकरूज होकर नहीं मरना चाहती।
महनाज राजी है?
महनाज मेरी बहू है और उसका मुझ पर बहुत हक है। मेरे पास कुछ रकम है, तकरीबन 6 लाख तुमान है, इसमें शामिल कर लो।
अम्मा जान आप क्या कह रही हैं? मैं अगर आपसे ये पैसे ले भी लूं तो आप पर कुर्बान जाऊं मैं।
आज ही ये खरीदार आया था लेकिन मैंने उससे कह दिया कि तुम गाड़ी नहीं बेचोगे।
तुम खरीदार को कल बुला लो, मैं जैसे भी हो सका अपनी बीवी को गाड़ी बेचने के लिए राजी कर लूंगा। महनाज, 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 ओ इन चंद सालों में तुमने हर तरह के सख्त हालात में मेरा साथ दिया, जरा बराबर शिकायत नहीं की, मुझे बच्चों के सामने किसी चीज की कमी की वजह से शर्मिंदा नहीं किया। इस वक्त तुमसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मां के सामने मेरी इज्जत रख लो, वो खुद भी राजी नहीं है लेकिन मैंने उनसे खुद वादा किया है। तुम्हें इसका इल्म नहीं, जब मैंने मां से यह कहा कि कब्र का मसला हल हो गया है तो उनकी आंखों में क्या चमक थी। अब भी अगर तुम राजी नहीं होगी तो गाड़ी नहीं बेचूंगा, तुम्हें अपनी बेटी की कसम।
काशानी साहब जरा ठहरे, असल में मैं 9 मिलियन से ज्यादा नहीं इंतजाम कर पाया।
आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं?
तुमने मेरे बेटे के साथ 12 मिलियन पे सौदा नहीं किया था?
मैं बाकी 3 मिलियन से सस्ती गाड़ी खरीद कर अपना काम चलाना चाहता हूँ। काशानी साहब ये है आपका ग्राहक?
शर्मिंदा हूँ मैं जनाब, असल में मैं अपनी बीवी का जेवर बेचना चाहता था लेकिन वो तैयार नहीं हुई।
जी रहीम साहब, क्या अभी आ रहा हूं, आया। काशानी साहब अगर 9 मिलियन तुम्हारा नकद है तो फौरी मुझे दे दे और बाकी 3 चेक काट दे 1 मिलियन के, मुझे दस्तखत कहां करने
हैं। بہت بہت شکریہ.
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
تم نے مجھے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا.
اپنا ہاتھ نیچے کرو. کون سا وعدہ, کون سا وعید؟
ہم نے آپس میں طے نہیں کیا تھا.
چھوڑ کے تمہارا ادھار کا انتظار کرتا. میں نے ثواب کے لیے کیا. اس کا جنازہ پڑا ہوا تھا. میرا ہاتھ چھوڑو.
ثواب کی بات نہ کرو. تم نے 3 ملین کی خاطر سودا خراب کر دیا.
چھوڑو.
کیا کر رہے ہو؟ امام زادے کے روزے میں بہت بری بات ہے یہ.
رحیم صاحب, میں نے اس شخص کو پیسے دینے کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی ہے. آپ میری ماں کو نہیں پہچانتے ہیں. میں ان کو کیا جواب دوں گا؟
میں نے تمہیں فون اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہاں کا لڑائی جھگڑا کرو. میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں نے اس سے کہا کہ کچھ دیر کے لیے رک جاؤ, لیکن اس نے نقد رقم دے کر قبر فروخت کر دی. دیکھو عباس, یہ چیزیں تمہارے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. یہ مردہ جو یہاں پر دفن ہوا ہے, اس کی قسمت میں یہاں دفن ہونا تھا. اب دیکھیں تمہاری ماں کی قسمت میں کیا ہے.
یہ تو بے غیرتی ہے. یعنی میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے, یعنی میری عزت نہیں ہے کہ ماں کے سامنے میری لاج رکھی جاتی. میں نے آپ سے کیا مانگا تھا؟ صرف چند ان زمین, وہ بھی آپ کی اپنی اولاد کی قبر کے نزدیک, وہ بھی آپ کے عشق میں. میری حیثیت کم ہے, لیکن آپ تو سخی و بزرگوار ہیں. میری مخلص ماں کا دل کیوں توڑ رہے ہیں آپ؟ وہ تو ایک عرصے سے آپ کے عشق میں آپ کی اولاد کی قبر پر حاضری دیتی ہے. میرے پاس جو کچھ دیا میں نے حاضر کر دیا تاکہ آپ راضی ہو جائے. آپ راضی ہو جائیں, میری ماں راضی ہو جائے. میں آج ہی 2 ٹکٹ لے کر آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں. دونوں ہی آئیں گے. آپ خود میری ماں سے کہہ دیں کہ نہیں ہو سکتا. کہہ دیں نہیں ہو سکا.
کربلا ہمارے انتظار میں ہے, آؤ مل کے چلیں کربلا.
اب آپ کو حسرت بھری نگاہ سے حرم امام حسین کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ چند دنوں میں کربلا جانے والے ہیں. یہ دیکھیں یہ ٹکٹ, پاسپورٹ اور سب کچھ.
یہ ایک دم کیا ہوا؟ جب میں کہتی تھی کربلا چلو تو تم کہتے تھے نا امی ہے, دھماکے ہیں, خطرناک ہے. اب کیا ہوا؟
امام حسین نے بلایا ہے تو ان کی خدمت میں جانا ہی ہوگا. کسی بات کی پرواہ نہ کریں, سب کچھ حل ہو چکا ہے.
مگر کیسے؟
اس طرح کہ میں تو ایسا ہی آدمی ہوں, ہر کام کر سکتا ہوں.
کیا ہوا, گاڑی کیوں نہیں بیچی؟
بیچتی اور پیسے بھی لے لیے, لیکن قبر کے مالک نے قبر کسی اور کو بیچ دی زیادہ پیسے لے کر. گاڑی خریدنے والے کو جب پتا چلا تو شریف آدمی نے گاڑی واپس کر دی. اچھا انسان تھا, شرافت دکھائی. تم گاڑی بیچنے پر راضی نہیں تھی نا؟
میں تو راضی ہو گئی تھی, خدا نے نہیں چاہا. عزیز کو کیوں نہیں بتایا؟
کیا کہتا, اپنی بوڑھی ماں کا دل توڑتا؟
अब क्या करोगे?
मैं उन्हें करबला लेकर जा रहा हूँ, खुद इमाम हुसैन से कहूँगा कि खुद ही माँ को बता दें, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। और हाँ, उन्हें चंद दिन मजार पर न जाने देना, समझ जाएंगी कि कब्र नहीं खरीदी हमने।
आखिर कब तक? अगर समझ गई तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आपने से जो हो सका आपने किया, खुदा को मंजूर नहीं था। अजीज भी खुदा की रजा में राजी है।
लाऊंगी, तुम्हें बहुत पसंद आएगी, खूबसूरत सी तुम्हारी जितनी। आए, मैं कुर्बान जाऊंगी।
मैं रास्ते में गाड़ी बहरोज को दे दूंगा, इन चंद दिनों में अगर कोई काम हो तो उसको कह देना।
ठीक है, अम्मा जान को कब्र के हवाले से सब कुछ पता है?
किस तरह, कहां से?
रुबाब बेगम ने कल फोन करके अजीज को बता दिया। ऐसा लगता है उन्होंने आका रहीम की बीवी से सुना है।
महनाज, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। हाँ, वो स्वेटर जो मैं मरियम के लिए बुन रही थी, उसकी आस्तीनें रह गई हैं, उसे मुकम्मल कर देना और उसे दे देना। शायद मैं जिंदा वापस ना आ सकूं।
आप कैसी बातें कर रही हैं? इंशाल्लाह आप खुद वापस आएंगी और अपने हाथों से मुकम्मल करेंगी।
जिंदगी का क्या भरोसा।
अम्मी, बहुत शर्मिंदा हूँ कि कब्र नहीं खरीद सका।
तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो, मैं तुमसे बहुत राजी हूँ।
जो लाचार और बेबस है, खुदा उसकी मदद करता है। जो इस बात के मुनकिर हैं, उसे तवस्सुल करना चाहिए। जो लाचार और बेबस है, खुदा उसकी मदद करता है। जो इस बात के मुनकिर हैं, उससे तवस्सुल करें।
ہم حضرت عباس علمدار کے حرم میں تھے، اچانک زمین پر بیٹھ گئے، میں نے جسم پر ہاتھ رکھا تو مکمل سرد ہو چکا تھا، میں نے اٹھایا تو کہنے لگے بیٹا میں مر رہی ہوں، تم مجھے یہی رہنے دو، بس اس کے بعد خاموش ہو گئی۔ وہاں کا رواج یہ ہے کہ جب کوئی حرم اور روزے کے اندر انتقال کرتا ہے تو اس کو وہیں دفن کر دیا جاتا ہے، ان کی آخری خواہش پوری ہو گئی، آخری خواہش پوری ہو گئی۔ Ha ha ha!